कमरे में जाकर जैसे ही उसने देखा कि उसकी बीवी वहां नहीं है, अब तो राजवीर का दिमाग सचमुच फटने को तैयार हो गया था। अचानक से अपने कानों पर हाथ रखकर वो जोरों से चिल्लाया था और गुस्से से सम्राट को देखने लगा था। उसके दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि आखिर यहां हुआ क्या होगा। तभी राजवीर सीधा अपने लैब में गया और वहां जाकर फटाफट कुछ अजीब से तरल पदार्थों को अलग अलग रंग के केमिकल्स के साथ मिलाकर उसने एक इंजेक्शन तैयार किया और सीधा आकर सम्राट की बॉडी में बड़ी बेरहमी से इंजेक्ट कर दिया। अचानक राजवीर के इंजेक्शन देने के कुछ ही मिनट बाद सम्राट पूरी तरह से उठकर खड़ा हो गया। उसका सिर अभी भी पूरी तरह से घूम रहा था, सिर बेहद भारी लग रहा था, लेकिन सामने खड़े राजवीर को वो हैरानी से देखने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में आस्था का ख्याल आया और उसने आसपास अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन ना तो वहां आस्था थी और ना ही वहां कोई और लड़की थी। ये देखकर सम्राट के माथे पर बल पड़ गए। उधर राजवीर लाह लाखों से सम्राट को घूर रहा था और तभी राजवीर सम्राट के पास से गुजरते हुए गुर्रा कर बोला था, कौन आया था यहाँ? ये सुनकर सम्राट को हैरानी हुई। वो तो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसे याद आया कि आखिरी बार वो आस्था के साथ बैठा हुआ था। इनफैक्ट वो आस्था को छूने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसे नींद आ गई थी। सम्राट को खुद पर ही अजीब लग रहा था कि भला वो इस तरह से कैसे सो सकता है। ड्रग्स के असर की वजह से उसे ये भी याद नहीं था कि वहां असल में हुआ क्या था। अब सम्राट हक्का बक्का होकर राजवीर को देखते हुए बोला था, आप कब आए गुरुजी और यहाँ हो क्या रहा है? तभी राजवीर दांत पीसते हुए बोला था, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, मुझे ये बताओ कि यहाँ कौन आया था। ये सुनकर सम्राट जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला था, यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे। ये सुनकर राजवीर ने दो बार अपने माथे पर हाथ मारा और गुस्से से बोला था, क्या वो लड़की यहाँ आई थी जिससे तुम मिलते थे? वही लड़की जिसे तुम पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रहे थे, क्या वो यहाँ आई थी? ये सुनकर सम्राट तुरंत बोला था, हाँ वो यहाँ आई थी, लेकिन अचानक वो कहाँ जा सकती है? कहीं आपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? इतना सुनते ही राजवीर का गुस्सा फट पड़ा। उसने पास पड़ी कुर्सी उठाकर जोर से जमीन पर पटक दी। टेबल पर रखा सारा खाना एक तरफ बिखर कर गिर पड़ा था। राजवीर गुस्से से कांपते हुए सम्राट की तरफ उंगली दिखाकर बोला था, तू एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ, और अपने आप को अरमान से कंपेयर करता है, तू तो उसके धूल के बराबर भी नहीं है। वो और गुस्से में चिल्लाया, इतना बड़ा लापरवाह कैसे हो सकता है तू? मैंने तुझे साफ साफ जाते वक्त कहा था कि उस लड़की को या फिर मेरी इजाजत के बिना किसी को भी इस विला में मत लाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। राजवीर की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। वो गरजते हुए बोला, मेरी बीवी कहाँ है सम्राट? मुझे मेरी बीवी चाहिए। जैसे ही राजवीर ने ये कहा, सम्राट के माथे पर बल पड़ गए। एक पल के लिए वो थोड़ा घबराया, फिर बोला था, आपकी बीवी? उसको तो मैंने ताला बंद करके कमरे में रखा हुआ था, वो कहाँ जा सकती है? तभी राजवीर ने अपने हाथ से इशारा किया और ठंडे लेकिन खतरनाक स्वर में बोला, जाकर चेक कर और आकर मुझे बता कि मेरी बीवी वहां है या नहीं। सम्राट तुरंत दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह से खाली था, वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर सम्राट पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला था, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसको यहाँ बंद किया था। फिर वो गुस्से में सिक्योरिटी की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, यहाँ क्या हुआ था? मेरी फ्रेंड्स जो यहाँ आई हुई थी, वो कब गई, किस वक्त गई? और जब मैं यहाँ टेबल पर सो गया था तो तुम में से किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? तभी राजवीर ने सम्राट को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तू सच में एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। अब सम्राट भी गुस्से से राजवीर को देखते हुए बोला था, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मेरी सिर्फ कुछ दोस्त यहाँ आई थी और उसके बाद वो सब चली भी गई थी। शायद मुझे सोते हुए देखकर उन्होंने मुझे उठाना जरूरी नहीं समझा होगा, इसीलिए यहाँ से चली गई होंगी। सम्राट थोड़ा रुककर बोला, और आपकी बीवी कहाँ है? इसके बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता। असल में सम्राट को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि आस्था या किसी ने उसे कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि उसके सो जाने के बाद शायद वो सब उठकर यहाँ से चली गई होंगी। कहीं ना कहीं इसी तरह के ख्याल अभी भी सम्राट के मन में चल रहे थे। फिलहाल राजवीर अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने सम्राट की गर्दन पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया और दहाड़ते हुए बोला था, अपनी फालतू की बकवास बंद कर, बस ये बता मेरी बीवी कहाँ है, कहाँ है मेरी बीवी? ये कहते हुए राजवीर सचमुच किसी जंगली शेर की तरह गरज रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से एक लड़की की आवाज आई थी, मैं बताती हूँ कहाँ है आपकी बीवी। ये आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से पीछे की ओर देखने लगे थे। वहां पर कोई और नहीं बल्कि संजना सिंह खड़ी थी। संजना पिछले 24 घंटे से आस्था पर नजर रखे हुए थी। जब उसने आस्था को अपने गैंग और उन लड़कियों के साथ इस तरह डाकविला में आते देखा था तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर आस्था इस तरह खुद मौत के मुंह में क्यों चली आई है और यहाँ क्या करने के लिए आई है। लेकिन जब उसने राजवीर की बीवी को आस्था के साथ देखा तो संजना की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाती, आस्था वहां से बहुत जल्दी निकल गई थी, लेकिन अब संजना को लगभग सब कुछ समझ में आ चुका था। वैसे भी वो राजवीर का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बिना बताए डाकविला से भाग गई थी। इसीलिए उसे डर था कि कहीं राजवीर गुस्से में उसे ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। फिलहाल संजना आगे बढ़कर राजवीर और सम्राट के सामने आकर खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली थी, आपकी बनाई हुई बीवी को जो लड़कियां इस डाकविला में मेहमान बनकर आई थी वही लेकर गई हैं। ये सुनकर सम्राट पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वो गुस्से से संजना को घूरते हुए बोला था, जुबान संभाल कर बात कर, वो लड़कियां मेरी मेहमान थी, वो भला ऐसा क्यों करेंगी, उनका भला मेरे गुरुजी की बीवी से क्या लेना देना, बोलो जवाब दो हमें। उधर राजवीर भी गहरे सोच में पड़ गया था। वो धीरे से बोला, भला अरमान सिंघानिया या वो लड़कियां मेरी बीवी को क्यों लेकर जाएंगी। असल में राजवीर को अभी तक ये पता ही नहीं था कि जाने अनजाने में जिस लड़की के पति को मारकर उसने उसे अपनी बीवी बनाया था वही लड़की आस्था अरमान की जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। फिलहाल राजवीर के मन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। वो लगातार संजना को घूरते हुए बोला था, संजना तुम जानती हो कि तुम यहाँ वापस आई हो तो जरूर सारी तैयारी करके आई हो, शायद तुम्हारे पास वो जानकारी है जिसकी हमें जरूरत है, साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ, बताओ कहाँ है मेरी बीवी। ये सुनकर संजना गहरी सांस लेते हुए बोली थी, अरमान सिंघानिया की बीवी को खत्म करने के लिए मैंने उस पर 24 घंटे नजर रखी हुई थी, क्योंकि मेरा इस डाकविला से भागने का इरादा भी यही था कि मैं अपने हाथों से आस्था की जान ले सकूं। वो गुस्से से बोली, क्योंकि मैंने ठान लिया था अगर मैं अरमान की नहीं हो सकती तो मैं उसकी बीवी को जिंदा भी नहीं रहने दूंगी, मैं उसे अरमान की जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगी। ये सुनकर सम्राट झुंझलाते हुए बोला था,
ये अरमान सिंघानिया की बीवी का नाम तुम यहाँ क्यों ले रही हो, यहाँ बात कुछ और हो रही है और तुम हो के अपनी दुश्मनी और बदले की बातें घुसेड़ रही हो, चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाओ। लेकिन तभी राजवीर ने हाथ उठाकर सम्राट को चुप रहने का इशारा किया और ठंडे स्वर में बोला था, इसे बोलने दो, जो कहना चाहती है कहने दो। सम्राट जल्दी से राजवीर की तरफ देखकर बोला था, गुरुजी ये लड़की बातों को गोल गोल घुमा रही है, आपकी बीवी का इन सब बातों से क्या कनेक्शन हो सकता है। तभी संजना ने गहरी सांस ली और सीधे राजवीर की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने खुद देखा है अरमान सिंघानिया की बीवी को, आपकी बीवी को यहां से ले जाते हुए। संजना की ये शब्द सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया और जब उसने दोबारा ठंडे लेकिन साफ शब्दों में कहा, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरमान सिंघानिया की बीवी आपकी बीवी को यहां से लेकर जा रही थी, तो ये सुनकर सम्राट की आंखें हैरानी से पूरी तरह फैल गईं और वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। ऐसा लग रहा था मानो कि सम्राट अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर अरमान के जाने के बाद आस्था बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रही थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और गहरी नींद में सोना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से रहस्यमय तरीके से अरमान को बुलाया गया था वो समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ सीक्रेट मीटिंग जरूर हो रही है और उस मीटिंग के बारे में आस्था कहीं ना कहीं पता भी लगाना चाहती थी। आस्था समझ चुकी थी कि अगर अरमान वापस आया है अपनी यादों के साथ और सबके सामने खुलकर आ गया है तो वो जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगा और न जाने उसका वो बड़ा कदम कितने लोगों की जान से होकर गुजरेगा। आस्था चाहती थी कि आज सम्राट और राजवीर को सजा जरूर मिले लेकिन अरमान के हाथों से कोई खून ना हो। आस्था का दिल और दिमाग इस वक्त बड़े ही जोरों से चल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि एक बार जाकर सबसे पहले प्रियंका को देखकर आए, इसलिए आस्था अब फटाफट उठी। उसने अच्छे से अपने आप को क्लीन किया और कपड़े पहनकर सीधे प्रियंका को देखने के लिए चली गई थी और जैसे ही वो वहां गई उसने देखा कि प्रियंका पहले ही गहरी नींद में सोई हुई है। तब आस्था ने सुकून की सांस ली, नानी माँ भी पास ही सोई हुई थी और प्रियंका भी आराम से सो रही थी। एक पल के लिए आस्था की नज़रें उस प्रियंका पर जाकर ठहर गई थीं जिसे राजवीर ने प्रियंका को अपनी बीवी की शक्ल के रूप में दिखाया था। प्रियंका के चेहरे को देखते हुए आस्था बड़े ध्यान से सोचने लगी थी कि आखिरकार कौन हो सकती है ये बेचारी लड़की जिसकी शक्ल राजवीर ने प्रियंका दीदी को दी है और जिसे वो अपनी बीवी कहा करता है। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की राजवीर जैसे इंसान की जिंदगी में कैसे आ गई थी। एक पल के लिए आस्था का दिमाग जोरों से घूमने लगा था लेकिन फिलहाल उसने सोचा कि अगर ज्यादा देर वो यहां खड़ी रही तो नानी माँ या फिर प्रियंका दीदी की नींद खुल सकती है। लेकिन उसके मन में एक हल्का सा सवाल जरूर आ चुका था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि राजवीर जैसे इंसान से नैना यानी कि जो उसकी असली बीवी थी उसने शादी की थी और प्रियंका में उसकी वही शक्ल जो बेहद खूबसूरत थी। फिलहाल ये सब सोचते हुए आस्था सीधा वापस अपने कमरे में आ गई थी। अब वो तहखाने में जाकर अरमान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अरमान उसे बिना बताए तहखाने में गया है तो जरूर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही होगी। फिलहाल आस्था आज जो कुछ भी हुआ था उसे एक बार फिर याद करने की कोशिश करने लगी थी। जिस तरीके से आज वो सम्राट के विला में गई थी और सम्राट को सामने देखने के बाद भी उसने उसकी जान नहीं ली। आस्था मन ही मन सोच रही थी, उसने हमारे प्यारे बच्चे को खत्म करने की कोशिश की थी,
ऊपर से वो हम पर ही इल्जाम लगाता है। उसे सम्राट की सजा अपने हाथों से ही देनी होगी। पता नहीं अरमान जी उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन मैंने ठान लिया है, इतनी आसानी से तो सम्राट को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये सब सोचते हुए आस्था के चेहरे के हाव भाव बेहद डार्क हो गए थे। साथ ही साथ वो ये भी समझ चुकी थी कि अब सम्राट के सामने उसका सच आ चुका होगा और उसे पता चल चुका होगा कि असल में वो कोई मासूम कॉलेज गर्ल नहीं है, बल्कि आस्था अरमान सिंघानिया है और उसके सबसे बड़े दुश्मन की बीवी है। न जाने अब तक सम्राट ने क्या तूफान मचा दिया होगा। आस्था का ध्यान पूरी तरह से सम्राट की तरफ ही चला गया था। वहीं दूसरी ओर सम्राट अपने उड़े हुए रंग के साथ पूरी तरह से हक्का बक्का होकर सजना की सारी बातें सुन रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि सजना जो कुछ भी कह रही है ये सच है। डाक विला में तो खुद वही आस्था को बाहर लेकर आया था। आस्था की किसी भी मूवमेंट से उसे ये नहीं लगा था कि वो उसे धोखा दे रही है, उसने तो खुद उसे अपना घर दिखाया था। तभी अचानक सम्राट के दिमाग में आया कि जिस तरह से आज आस्था कमरे में ताला लगा हुआ देखकर उसी जगह रुक गई थी, उसके माथे से पसीना निकल रहा था। ये सोचते ही सम्राट ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। इस वक्त उसका चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। एक पल के लिए सम्राट का चेहरा देखकर सजना पूरी तरह से डर गई थी और सोचने लगी थी कि कहीं सच के बदले ये सब की बुरी तरह से खबर ही ना ले ले। लेकिन सम्राट अभी भी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा था और डार्क चेहरे के साथ वहीं खड़ा होकर सारी चीजों पर गौर कर रहा था।